Krishna and Parameshwar Bhagavan. Aur Bhagavan ke gun ke anusar aur unke lila ke anusar Bhagavan ke bahut sare naam hain. Yadyapi Bhagavan hai ekam eva advitiya parama purusha. Bhagavan hai ek और जिनकी कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय, जिनके समान कोई नहीं है और जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, वो है परमेश्वर भगवान. और उस परमेश्वर भगवान के अंतहीन अनंत गुण हैं और भगवान की अनंत लीला है और उनके गुण और लीला के अनुसार भगवान के बहुत सारे नाम हैं. जैसे ये भगवान शब्द का भी भगवान की गुण का ही द्योतक है, गुण का ही परिचय प्रदान कर. जैसे जिनकी बल है उसको हम क्या बोलते हैं, बलवान, गुणवान, रूपवान, धनवान. वैसे ही भगवान मतलब जिनके भग है वो है भगवान. तो भग का मतलब क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नामीति भगवत. ऐश्वर्य, सारे ऐश्वर्य, सारे दौलत, सारे ऐश्वर्य जिनके पास है. ऐसे कोई आदमी है जिनके पास थोड़ा बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन ऐसा कोई है जिनके पास सारे ऐश्वर्य है, जो कह सकते हैं कि सारे ऐश्वर्य मेरा है. वैसे ही सारे शक्ति, सारे यश, सारे सुंदरता, सारे ज्ञान और सारे त्याग, ये छह जिनमें है वो है भगवान. कोई है ऐसा छह क्या, एक भी हम नहीं देख सकते हैं जिनके पास एक भी ऐसी गुण. लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है, हमारे शास्त्र कहता है, है. और वो है एकम एव अद्वितीय परम पुरुष, परम पुरुष. और उनके गुण के अनुसार बहुत सारे नाम है. जैसे उनका एक गुण है वो आकर्षण करते हैं, सबको आकर्षण करते हैं. उसके लिए इनका उनका नाम है कृष्णा, जो आकर्षण करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आकर्षण है लेकिन पूर्ण रूप से आकर्षण जो करते हैं सबको, सबको जो आकर्षण करते हैं वो है भगवान. ये भगवान के गुण के अनुसार भगवान के नाम है. रमते इति राम, भगवान आनंद, रमन प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान है राम. ऐसे भगवान के गुण के अनुसार बहुत सारे नाम हैं. सारे जीवों को आश्रय है इसलिए वो है नारायण. सारे जगत को प्रकाश करते हैं इसलिए वो है विष्णु. ऐसे ही भगवान की लीला के अनुसार बहुत सारे नाम है. जैसे भगवान यशोदा माई के पुत्र है इसलिए भगवान का नाम है यशोदा नंदन. ये एक लीला है भगवान का, माता का क्या, जो जिनका जो सारे सृष्टि के मालिक हैं लेकिन जिनका सृष्टि नहीं होता है वो है भगवान. और भगवान क्या है, जीव को भी सृष्टि नहीं होता है वैसे, यह शरीर का तैयारी होता है, शरीर का जन्म होता है, बल्कि आत्मा का। तो सारे आत्मा का जो आत्मा है परमात्मा, उनका माता पिता का क्या सवाल होता है। लेकिन भगवान लीला करते हैं वैसे, लीला के अनुसार भगवान माता को ग्रहण करते हैं, किसी को, कोई भक्तों को माता बनाते हैं, कोई भक्तों को पिता बनाते हैं। जैसे हम ड्रामा देखते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, वैसे भगवान के एक नाटक हो रहा है। भगवान को नाटक को कहता है, कहा जाता है लीला। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं। भगवान का एक बहुत ही सुंदर लीला है, दामोदर लीला। दाम का मतलब है रस्सी और उदर पेट। रस्सी के द्वारा भगवान को पेट को बांधा गया था, तो उसलिए भगवान का नाम पर नाम बन गया दामोदर। भगवान लीला करते हैं, यद्यपि भगवान सारे संसार के मालिक हैं, सारे सृष्टि के स्रोत हैं, फिर भी भगवान एक बच्चा जैसा लीला कर रहे हैं। माँ यशोदा और नंद महाराज के पुत्र के केवल बालक ही नहीं है, बहुत नटखट भी है, नटखट कन्हैया। तो भगवान ग्वालों को घर में जाकर मक्खन चुराते थे। देखिए ये भी कितना सुंदर लीला है, जो सारे संसार के मालिक हैं मक्खन चुरा कर खाते। इसका एक विचार ऐसा भी है कि भक्ति के द्वारा हम भगवान को जो कुछ अर्पण करते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो भगवान को अर्पण हो रहा है, लेकिन भगवान को पहचान नहीं रहा। तो क्या हो रहा है, भगवान को अर्पण कर रहे हैं भक्ति के साथ, बल्कि भगवान जो सामने खड़ा हुआ है उसको पहचान नहीं रहा है। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, जबरदस्त उसको ग्रहण कर रहे हैं। एक सुंदर लीला ऐसे भी है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब बच्चे थे, एक दिन उनका घर में उनका पिता एक ब्राह्मण को निमंत्रण किया। तो ब्राह्मण बहुत सात्विक थे, वो खुद पकाकर खाते थे, भगवान को भोग लगाकर खाते थे। तो खाना बनाया और जब भगवान को भोग दे रहे, भोग लगा रहे थे बाल गोपाल को, वो बाल गोपाल पूजक थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु आकर खाना शुरू, ब्राह्मण ने रोने लगा, देखो मेरा भोग भगवान को जो मैं चढ़ा रहा था उसको बर्बाद कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, भगवान को अर्पण कर रहे हैं और भगवान जो सामने है उसको पहचान नहीं रहा। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान भक्तों का जो निवेदन है उसको जबरदस्त रोल करते हैं, चुरा कर खाते हैं, लगता है कि चुरा कर खा रहे हैं, बल्कि असल में क्या हो रहा है, भगवान को निवेदन हो रहा है और भगवान को पहचान नहीं रहा है। तो इसलिए भगवान आकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो वैसे ही ब्रजबंधु ने ग्वाल पत्नीगण गोपीगण ऐसे भगवान के लिए मक्खन निकाल रहा है दूध से दही से, लेकिन भगवान को नहीं कृष्ण को नहीं वैसे दे रहे। तो इसलिए क्या कर कृष्ण ने क्या किया, आकर जबरदस्त लिया, तो लगता है कि चुरा कर ले रहे। तो तब गोपियों ने मां यशोदा के पास जाकर कंप्लेन किया, अभियोग किया, देखो तुम्हारा कन्हैया ऐसा कर रहा है। तो मां यशोदा को ऐसे लगा कैसे हो सकता है, वो कन्हैया तो मेरा पास बैठा हुआ था। तो बोला आप क्यों बोल रहे हैं कि काला कन्हैया तो मेरा पास बैठा था उस समय। तो कन्हैया क्या चुरा भी सकते हैं और बैठे भी सकते हैं? तो गोपियां ने बोला तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मां यशोदा बोला नहीं झूठ मैं नहीं बोल रहा कि झूठ बोल रहे हो, मैं सिर्फ केवल ये सोच रहा था कि तुम जब बताया कि तुम्हारे घर में जाकर ऐसे किया, तो उस समय तो कृष्ण ने मेरे पास बैठा था, इसलिए मेरा मैं सोच में पड़ गया। तो गोपी थोड़ा सा उसको अहंकार में चोट लगा, तो बोला ठीक है मैं तुमको दिखाऊंगा, अगले बार उस जब मेरा घर में जाएगा तो उसको पकड़ के तुम्हारे पास लाऊंगा, तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा बच्चा क्या करता है, तुम्हारा बालक क्या करता है। तो ऐसे गोपी प्रतीक्षा कर रही थी। तो एक दिन कृष्ण ने अपने ग्वाल बाल के साथ गया और एक के कंधे पर और एक चढ़कर वो मक्खन का मटका नमाया, दो एक नहीं दो चार नमाया, दो चार उतारा और सब खुद खाया और ग्वाल बाल को खिलाया। जब सब ग्वाल बाल को खिलाने के बाद बंदर कुछ आया था वहां, उसको भी खिलाया, और जब बंदर भी खाना नहीं चाहा तो कृष्ण ने बोला ये मक्खन इतना खराब है कि बंदर भी इसको खाना नहीं चाहता। ये कहकर मक्खन का मटका तोड़ दिया और गोपी का बच्चा सो रही थी वहां, सो रहा था, उसको पिंच करके उठाया, वो रोने लगा और तब वहां से निकलने का तय किया। जब कृष्ण ने निकलना का कुछ निकल रहा था तो गोपियां उस गोपी छुपकर दरवाजे के बाजू में छुपकर रह खड़ी थी, आकर कृष्ण को पकड़ बोले चलो आज तुम्हारे पापों में। कृष्ण बोला प्लीज डोंट टेक मी टू माय मदर, मां के पास मत ले जाना क्योंकि मां बहुत डांटेंगे, शायद मारेंगे भी, तो अब छोड़ दीजिए, अब कभी मैं आपका घर नहीं आऊंगा चुराने के लिए। गोपी बोला नहीं आज तुमको पकड़ा तो आज जरूर तुमको मां के पास ले जाऊंगा। ये कहकर अपने कंधे पर कृष्ण को चढ़ाकर यशोदा माई के पास गया, बोला देखो आप तो विश्वास हो रहा है होगा तुम्हारा बच्चा क्या करता है। तो मां यशोदा हंसने लगी, बोला पकड़ कर लाया और तुम हंस रही हो, मैं पहले बताया था तुमको कि तुम्हारा बच्चा ऐसा करता है तो तुम नहीं माना मेरा बात, और आप जब उसको पकड़ के लाया तो तुम हंस रही हो। तो मां यशोदा ने बोला देखो किसको तुम लाए हो। और जब गोपी देखा कि अपने बच्चे को कहां पर लेकर शर्मिंदा होकर सर झुकाकर वो अपने घर में जाने लगी, घर की ओर जाने लगी। तब सुना कृष्ण ने हंस रही है, तो देखा देखा अपने कंधे पर कृष्ण को देखा भी जा रहा है, तो बोला कृष्ण तो इतना नटखट है, हमें जितना शर्मिंदा बनाया तेरे माँ के पास। तो कृष्ण बोला मैं बोला था माँ के पास मत ले जाओ। मैं कितने बार आपको विनती किया, मैं बोला आपको घर में कभी चुराने के लिए नहीं आऊंगा, तो आपका बात मेरा बात आप नहीं सुना, तो किसी तरह तो आपने आपको रक्षा करना पड़ेगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारे बच्चे के रूप में गया, और आगे कभी हमको पकड़कर मेरे पास ले जाओगे तो मेरा तो तुम्हारा मैं तुम्हारा पति का रूप ले दूंगा। तो ये है नटखट कन्हैया। ये कहानी गर्ग संगीता में गर्ग मुनि ने वर्णन किए। तो ऐसे मां यशोदा भी सोचने लगा, ऐसे गोपीगण हमारा ऐसे अभियोग करता है, तो क्या हुआ, कृष्ण क्यों जाकर मक्खन चुराते हैं, क्या मेरा घर का मक्खन इतना अच्छा नहीं है। तो माँ यशोदा ने सोचा कि मेरा गौशाला में जो सबसे बढ़िया गाय है उसको चुना, उसको सबसे बढ़िया घास खिलाया, और उस सोचा कि उस गाय के दूध से माँ यशोदा मक्खन बनाकर कृष्ण को देंगे। सोचने लगा कि क्या मेरा मक्खन उतना अच्छा नहीं है, इसलिए कृष्ण दूसरे घर में जाकर आते हैं। तो माँ यशोदा वो दूध को गर्म कर रही थी, और उस समय और नहीं, वो दूध से मक्खन तैयार कर रही थी, दूध से दही, दही से मक्खन। तो उस समय कृष्ण आकर माँ यशोदा के पास आए, तो माँ यशोदा सब का दिल प्यार से भर गया, और सोचा भी, उसको पता भी चला, मालूम पड़ा कि कृष्ण उनका दूध पिलाना चाहते हैं। तो अपने गोद पर बैठा कर कृष्ण को दूध पिलाना था माँ यशोदा, और कृष्ण भी बहुत आनंद के साथ माँ की दूध पी रहा था। अचानक माँ यशोदा को पर याद आया, अरे वो दूध तो उबाल रहा है, शायद गिर जाएगा, तो झट से कृष्ण को अपना गोद से उतार कर चले गए दूध संभालने के लिए। कृष्ण बहुत ही आनंद के साथ माँ का दूध पी रहा था, और देखो माँ कह क्या किया, अपना गोद से ऐसे उतार कर चले गए, और ये सोचकर कृष्ण का बड़ा अभिमान हुआ, और कृष्ण ने रोने लगा, कुछ समय तक रोया, और बाद में उसका बहुत क्रोध हुआ। मैं तो दूध पी रहा था, वो दूध जो था उसको क्या उतना जरूरी था, वो दूध भी तो मेरा लिए ही था, उस दूध से तुम मक्खन बनाना चाहता था, और ये मक्खन तुम बना रहे हो मेरे लिए बना रहे हो, चलो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो, और मैं जो आनंद के साथ आस्वादन कर रहा था वो तुम आस्वादन करना नहीं दिया। तो ये सोचकर क्रोधित होकर कृष्ण ने एक पत्थर उठाया, और जो मक्खन का जो मटका बनाने का जो वो मटका को तोड़ दिया और सारे मक्खन, सारे दही, सारे छाछ निकल गया, सारा घर में वो बह गया। तो उसके बाद कृष्ण ने जहां मक्खन रखा था वहां से एक उदुखल के ऊपर चढ़कर वो मटका को ये किया, उससे निकाला और मक्खन खाया, बंदर को खिलाया और उदुखल के ऊपर बैठकर। तब इसके तब माधव मां यशोदा ने वहां आकर देखा मटका तोड़ दिया, पानी से, दूध से, छाछ से सारे घर भर गया है। और तो मां यशोदा ने सोचे शायद जरूर ये कृष्ण का ही काम, तो एक छड़ी हाथ में एक छड़ी देकर जब जो नेक्स्ट कमरा में गया, बगल वाला कमरा में जब गया तब देखा कृष्ण ने मक्खन खा रहा। और कृष्ण भी मां यशोदा को देखते हुए ही वो उदुखल से उतार कर भागा। यशोदा भी अलुखलात धाव, मां यशोदा को आते हुए देखकर कृष्ण ने उदुखल से उतार कर धाव मानम भागा। और मां यशोदा भी उनके पीछे पीछे गए। और बहुत समय कृष्ण को पकड़ने को लगा। वर्णन ऐसे हुआ है, कृष्ण बच्चा है, यद्यपि कृष्ण बच्चा है बल्कि मां यशोदा का शरीर थोड़ा भारी था, उनका स्तन और उनका कमर नहीं, ये पीछे भारी होने के कारण उतना जल्दी मां यशोदा भाग नहीं पाए, दौड़ नहीं पाए। तो जब कृष्ण देखा मां थक गए हैं तो कृष्ण ने मां को पकड़ कर दिया। तो मां यशोदा और उनका हाथ में छड़ी देखकर रुदंतम मुहुर नेत्रम जुग्मम मृगम, हाथ में छड़ी देखकर कृष्ण डर गया और रोने लगा। तो ये कृष्ण को रोते हुए देखकर मां यशोदा ने सोचा उसका मन में डर आ गया, ये ठीक नहीं होगा, तो छड़ी फेंक दिया। लेकिन ये भी सोचा कि उसको अगर हम शासन नहीं करेंगे, उसको सजा नहीं देंगे थोड़ा सा, तो उसको सुधारेगा नहीं, संशोधन नहीं होगा इस गलत फहमी का। तो मां यशोदा ने सोचा कि एक रस्सी से कृष्ण को बांध कर वो उदुखल के साथ बांध लेंगे। तो रस्सी लाया और कृष्ण को कमर दाम उदर दाम के द्वारा, रस्सी के द्वारा कृष्ण का उदर पेट बांधने का तय किया। लेकिन देखा कि ये दो अंगुली कम है, रस्सी छोटा है, और रस्सी लाया, बल्कि जितना भी रस्सी लाते हैं जोड़ते हैं दो अंगुली कम। मां जैसा ऐसे कृष्ण को बांधने का कोशिश करते हुए बिल्कुल थक गया, पसीना पसीना हो गया। तो कृष्ण ने सोचा चलो माँ को हम उनका चाहना मैं पूरा करूंगा। तो रस्सी से बांधा कृष्ण को और जो उदुखल से बंधन के लेकर उदुखल के ऊपर चढ़कर कृष्ण ने मक्खन चुराया था, उस उदुखल के साथ कृष्ण को बांध दिया, उखल के साथ कर बांध कर चले गए अपना काम करने के लिए। और तब कृष्ण ने कुछ समय ऐसे खड़ा था, बाद में उसको अच्छा नहीं लगा, बांध कर चले गए, तो कृष्ण ने वो उदुखल को उखल को उल्टा दिया, जमीन में फेंक कर खोज उसको खींचने लगा। ऐसा लगा कि ये कृष्ण ने एक खेल इन्वेंट कर चुका है और वैसे अंगन में घूमने लगा। घूमते घूमते वहां दो अर्जुन वृक्ष था, बहुत बड़ा अर्जुन वृक्ष था। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं दो अर्जुन वृक्ष के बीच से निकल जाऊंगा। तो कृष्ण ने निकल गया, बल्कि उखल वहां अटक गया है। और कृष्ण ने जब उसको खींचा तो दो वृक्ष, विशाल वृक्ष, उसको अपरूटेड, सब मूल सब समय वो गिर पड़ा। बहुत जोर से आवाज हुआ गिरने से, तो मां यशोदा आज निकल कर आया और खुद देखा कि ये वृक्ष निकल उतार गया है। और उनका मन में भाई और कृष्ण का तो यहाँ रखकर मैं गया था, कृष्ण को तो कुछ ये चोट नहीं लगा इससे, और कृष्ण का क्या हुआ। और तब देखा दो वृक्ष के बीच कृष्ण ऐसे उखल के साथ बंधे हुए बैठे। तो जो बच्चे लोग सब आया वहां आकर देखने लगा क्या हुआ क्या हुआ। और जो बच्चे लोग वहां थे उन्होंने बताने लगा क्या हुआ कि ऐसे कृष्ण का, जब कृष्ण ने जब दो वृक्ष के बीच से निकला और उखल अटक गया और उसको खींचने से दो पेड़, विशाल पेड़ मूल के साथ गिर पड़ा। और तत्पश्चात वो वृक्ष वहां दो व्यक्ति आया जो बहुत सुंदर ज्योतिर्मय था और बहुत सारे सुंदर आप वेश पहने हुए अलंकार से भूषित थे। उन्होंने आकर भगवान के पास, कृष्ण के पास कुछ हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। वो कौन थे? नल कुबेर और मणिग्रीव। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास किया हो सकता है कृष्ण का कार्य बहुत ही आश्चर्य होता है हो सकता है कृष्ण ऐसे किया। और बाकी लोग सोचा कि ये देखो बच्चे लोग कैसे कहानी सुनाते हैं। तो ऐसे कुबेरात्म जो बद्ध मूर्ति बजट, एक कुबेर का और दो पुत्र था, नल कुबेर और मणिग्रीव, जिनको सांप मिला था नागभूमि से कि तुम वृक्ष बनकर धरती पर जाओ। और तब वो नंद महाराज के आंगन में दो वृक्ष के रूप में आए। और जब उन्होंने विनती किया तो नारद मुनि ने बताया ठीक है, भगवान जब लीला करने के लिए आएंगे तब भगवान तुम्हें उठा। तो ऐसे भगवान इस दामोदर लीला के माध्यम, इस नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र को उद्धार किए थे, उद्धार करके अपना प्रेम भक्ति प्रदान किया था। कुबेरात्म जो बद्ध मूर्ति बजात तया मोचितो भक्ति तथा प्रेम भक्ति सकाम। जैसे आप कुबेर को, दो पुत्र को उद्धार करके प्रेम भक्ति प्रदान किए थे, वैसे हमें भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। तो वैसे भगवान अपने लीला के द्वारा भक्त गणों को, अपने जो भक्त हैं, जो भगवान के बहुत प्यारे होते हैं, उन भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। इति दृक्षा लीला भी आनंद कुंडे सघोषण निमज्जन इति दृक्, इस तरह स्वलीला भी अपने लीला के द्वारा भगवान अपने भक्तोगणों को सघोषण निमज्जन डुबा देते हैं आनंद कुंडे, आनंद के सागर, आनंद के सरोवर। तो ऐसे भगवान ये दामोदर लीला करके भक्तगण को आनंद प्रदान किया, कुबेर के दो पुत्र को उद्धार किया, और इस लीला के द्वारा भगवान हम सब को भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये लीला स्मरण करके, ये लीला श्रवण करके हमें भी कितना आनंद मिलता है, और इस आनंद के माध्यम भगवान के प्रति भक्ति परायण होने का प्रेरणा हमें मिलता है। श्री श्री राधा दामोदर की गौर प्रेमानंदे।